الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج هم إن شاء الله تعالى سورة يونس آيات نمبر 37 سے 60 تک پڑھیں گے. آج کا جو ہمارا سبق ہے اس میں آپ دیکھیں گے قرآن پاک کی حقانیت پہ بہت بات ہے. قرآن پاک کو ثابت کیا گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے, اس کا کلام ہے, اور یہ بھی کہ اس کی کیا صفات ہیں, یہ بھی ہم دیکھیں گے آج کے سبق میں. اور چونکہ قرآن پاک کو جو مان لے گا, جو قرآن کی حقانیت کو اس کو سچ سمجھ لے گا, اس پہ یقین کر لے گا, تو جو کچھ اس کے اندر ہے پھر اس کو بھی ظاہر ہے ماننے کا, تو وہ تو ایمان لے آئے گا نا. اصل بات یہ ہے اگر قرآن کو سچا مان لیا تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی, پھر تو مطلب انسان اپنے شرک سے بھی باز آ جائے اور اس کی زندگی بدل جائے گی. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب لوگ قرآن پاک کو ہی جھٹلا دیتے کہ نہیں نہیں ایسی کوئی اللہ تعالیٰ نے بات کی ہی نہیں. آج بھی جو اہل کتاب ہیں یہ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں سمجھتے بلکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ہی کلام سمجھتے ہیں, اور اس وجہ سے وہ اس کے اوپر ایمان نہیں لاتے. اور اللہ پر ایمان, قرآن پر ایمان, رسول پر ایمان, آخرت پر ایمان, سارے ایمانیات ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ایک کا انکار ہے سب کا ہی انکار ہو گیا. جو جس نے کہا کہ قرآن کو ہی نہیں میں مانتا تو اس نے انکار کر دیا جو کچھ قرآن پاک میں, اور قرآن پاک میں جو سارا حق ہے اس کا انکار کر دیا, توحید کا انکار کر دیا. تو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اس قرآن کی حقانیت کو بیان فرمایا. آیت نمبر 37 سے 60 تک سورہ یونس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله, اور نہیں ہے یہ قرآن کے گھڑ لیا جائے اللہ کے سوا. یعنی یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہ اتارا ہو بلکہ کسی نے اپنی طرف سے ہی گھڑ لیا. کیونکہ وہ لوگ کہتے تھے نا کہ یہ یہاں سے سیکھ کے آئے ہیں, وہاں سے اس سے سن کے آ گئے ہیں, تو اس کی حقانیت کا اللہ تعالیٰ نے خود ثبوت دیا کہ اللہ فرماتا ہے یہ کوئی من گھڑت چیز ہے ہی نہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خیالات کو ترتیب دے کے اور کہہ دیا یہ قرآن. ولیکن لیکن یہ پھر کیا ہے؟ تصدیق الذی بین یدیہ, یہ تو تصدیق کرتا ہے ان کی جو کتابیں پہلے گزری. تم ان کتابوں پر ہی ایمان رکھتے ہو, اگر تم سمجھتے ہو کہ تورات سچی تھی, انجیل سچی تھی, تو پھر جو ان کو بھی سچا کہہ رہا ہے, جو بھی ان کے بھی حق ہونے کی دلیل دے رہا ہے, وہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ, اور تفصیل ہے کتاب کی, اور جو پہلی کتابیں ہیں ان کی بھی تفصیل بیان کرتا ہے, ان میں جو چیزیں صحیح تھیں ان کو صحیح بتاتا ہے, جو چیزیں ان میں نئی شامل ہو گئیں ان کو منسوخ کرتا ہے, ان کو بتاتا ہے کہ وہ بعد میں لوگوں نے شامل کی, اور شریعت کی تفصیل کرتا ہے. لا ریب فی, دیکھیں یہ قرآن جو ہے نا, جو جتنی کتابیں گزر گئیں اب سمجھ لیں کہ وہ ایکسپائر ہو گئی ہیں. کوئی انسان ایکسپائرڈ چیز پسند نہیں کرتا. وہ ان کے ساتھ تھیں, انہی قوموں کے یا ان رسولوں کے ساتھ اتری تھیں, آج وہ اگر اپنی اوتھینٹک شکل میں بھی ہوتی تب بھی قرآن ان پہ سپرسیڈ کرتا. کیونکہ یہ وہ لیٹسٹ شریعت لے کر آیا جو قیامت تک کے لیے, اور کجا یہ کہ وہ تو بالکل ہی چینج کر دی گئی. ये कुरान तफसील बयान करता है, एक्सप्लेन कर देता है सारी बात को। ये ऑथेंटिक वर्जन है सबका। ला रईबा फी, इसमें कोई शक नहीं है कि ये रब्बुल आलमीन की तरफ से ही है, और उसकी तरफ से ये किसी ने कुछ बनाया नहीं हुआ। देखिए, कभी अगर इंसान के दिल में शैतान ऐसा ख्याल डाल दे कि क्या पता, पता नहीं इसमें कोई बात सही है कि नहीं, पता नहीं किसी ने ना मिला दी हो, तो कुरान खुद बताता है इस चीज की दलील है कि ये सच्चा है। मैंने आपको पहले बताया था ना कि ये हक है, और हक का मैंने आपको एक मतलब बताया था। हक वो है जो अपने सबूत के लिए कोई खारजी, कोई एक्सटर्नल दलाइल या सबूत, या जो अपने आप को हक साबित करने के लिए कोई एक्सटर्नल चीज आपको लाने की जरूरत नहीं है, वो खुद अपने आप को साबित करता है कि मैं सच्चा हूं। और ये कलाम खुद अपने आप को साबित करता है कि ये रब्बुल आलमीन की तरफ से, ये किसी इंसान का बनाया हुआ नहीं है। उस जमाने के बड़ा शायर था लबीब, उसकी शायरी इतनी जबरदस्त होती थी कि काबा में लटकाई जाती थी। लेकिन जब वो सूरह कौसर उतरी तो उसने भी कहा कि नहीं, जब उसको ये सूरत सुनी तो उसने कहा कि नहीं, मेरा कलाम अब मैं गिव अप करता हूँ शायरी को, क्योंकि मैं अब इसका तो मुकाबला हो ही नहीं सकता। जो पहचानने वाले हैं वो पहचान सकते हैं, ये अपना सबूत आप है जिसको कहते हैं। हाँ, मगर ये अलग बात है कि हिदायत हर एक के नसीब में नहीं होती, वरना इसके हक होने में कोई शक नहीं है कि पता चलता है कि ये वाकई सच्चा कलाम है। अम यकूलून अफ्तरा, वो कहते हैं कि इसने घड़ लिया क्या, या फिर या वो कहते हैं कि इसने खुद ही घड़ लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा कि आपकी तसनीफ है। कुल फतू भी सूरत इन मिथली, तो वो अच्छा अगर इन्होंने घड़ लिया तो तुम भी घड़ के ले आओ, तुम भी ले आओ ना कोई सूरत ऐसी। और कोशिश की थी एक शख्स ने जिसने नबुवत का दावा किया था, मुसैलमा कज़्ज़ाब, उसने ये कहा कि ये मेरा कुरान है, ये मेरे ऊपर उतरती है। तो उसके अपने कबीले वाले भी हंस दिए, उन्होंने कहा ये किसी और को ना सुना दी, ये तो उस ये क्या एक से एक साथ काफिये मिलाए में ना उसके अंदर कोई अकल की बात ना समझ की बात। तो ये जो आज भी लोग कहते हैं ना, भाई बहुत फैलाओ इस बात को, वो यहूदियों ने कुरान बना लिया, वो वेबसाइट पे कुरान पढ़ा हुआ है, वो भाई इस कुरान का मुकाबला नहीं हो सकता। वो जितना मर्जी अब उसको नाम रख लेने से थोड़ी वो कुरान बन जाएगा। अब कोई आके यहाँ पे खड़ा हो जाएगा कि मैं रसूल हूँ, मैं फलां रसूल हूँ, किसी भी रसूल का नाम ले, तो वो थोड़ी बन जाएगा। तो अब आप कहते जाएं देखो भाई पहचानो पहचानो, झूठा एक रसूल आ गया। भाई जिसको सच्चाई की पहचान होगी ना, वो फिर कभी इन बातों में नहीं आएगा। जिसने कुरान पढ़ा होगा ना, वो तो ये लम्हे में समझ जाएगा कि ये झूठ है, ये घड़ी हुई बातें। तो इसलिए उन बातों को ना फैलाएं कि देखो उन्होंने बना लिया, देखो उन्होंने बना लिया, वो कुरान है ही नहीं, उसको कुरान कहे ही नहीं। अगर उन्होंने उसका नाम भी रख दिया है तो वो कुरान थोड़ी कहलाएगा, नाम रखने से कुरान थोड़ी हो जाता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजजा है कुरान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं नबियों को ऐसे मौजजे दिए गए कि उनकी वजह से लोग उन पर ईमान लाए, और मेरा ऐसा मौजजा है कि मुझे उम्मीद है कि मेरे ताबेदार बनिस्बत उनके भी बहुत ज्यादा होंगे। क्योंकि जिसने इसको समझ लिया, जो इस कुरान को जान गया ना, वो ईमान लाए बगैर नहीं रह सकता। और ये अलग बात है कि कोई जिद में है, हट धर्मी में है, ख्वाहिशात में पड़ा हुआ है और वो नहीं मानना चाहता, वरना ऐसा नहीं है कि उसके सामने हक नहीं खुलेगा, ये खुद बताएगा कि मैं सच्चा हूं। और इसी वजह से आप देखें, जो लोग हर किस्म की बायस एक तरफ रख के वो खुले जहन के साथ कुरान पढ़ते हैं, समझते हैं ना, तो वो ईमान ले आते हैं। आप कई गैर मुस्लिमों को, जो पहले गैर मुस्लिम थे, जो रिवर्टेड है, कई को आप सुने वो कहते हैं कि हम इस्लाम से पहले हमने किस चीज को देखा या क्या चीज हमें इस्लाम के करीब लेकर आई, कुरान। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ठीक है, अगर उन्होंने घर लिया तो तुम अपने आप को इतना जुबानदान समझते हो, तो हमने आपको इतना बड़ा, बड़े बड़े शायर उनमें थे, बड़े अपने आप को फसीह और बलीग समझते थे, तो तुम्हारी भी तो अरबी जुबान ही है, तुम भी ले आओगे कैसा। चैलेंज है, और कयामत तक के लिए ये चैलेंज है, सिर्फ अरबों को नहीं था उस वक्त के, कयामत तक के लिए। कोई भी ऐसा हो जो कि उठ के कहे कि हाँ मैं न कुरान के जैसा एक कलाम लेकर आया हूं। और फरमाया वदाउ मन इस्तता तुम मिन दूनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन, और तुम अपने साथ मिला भी लो, उनको भी बुला लो अल्लाह के सिवा हर एक को, सब फरिश्ते जिन इंसान सारे भी मिल जाए ना, इस कुरान जैसी चीज नहीं बना के ला सकते। यहाँ पे एक सूरत का चैलेंज है और दूसरी जगह पे आयत का भी चैलेंज है कि एक आयत ही ले आओ, तुम एक आयत भी नहीं बना के ला सकते ऐसी। अब चूंकि हमें अरबी जुबान के ऊपर कमांड नहीं हासिल होती ना, तो हमें उतनी इसके जवाहर नजर नहीं आते, हम समझ नहीं पाते कि इसके अंदर कितनी डेप्थ है और कितने इसके राज हैं, जो आज तक लोग इसमें से मोती चुनते ही चले जा रहे हैं। बल कद्दबू बिमा लम युहीतु बिइल्मिही, बल्कि उन्होंने झुठलाया साथ उसके जो उन्होंने अहाता नहीं किया इसके इल्म का, यानी उन्होंने झुठलाया बगैर समझे इस कलाम को। ये कितना बड़ा जुल्म है ना, उस वक्त भी ऐसे और आज भी ऐसे। ला इल्म लोग जो जिन्होंने इसको ना अभी समझा ना इसको अभी सही तरह से इसको पाया, और वो उसको झुठलाने खड़े जाते कि हम तो मानते नहीं। अरबी का एक कहावत है कि इंसान उस चीज का दुश्मन होता है जिसको वो जानता नहीं, और वाकई जिस चीज से इंसान बेखबर होता है ना, बेइल्म होता है, उसकी मुखालफत शुरू कर देता है, कहता है हम नहीं मानते, उसके पास एक ही जवाब होता है हम नहीं मानते। और आज भी जो दुनिया इनकार करती है ना, वो इसलिए करती है कि वो नहीं इसको समझे होते। नबी अलैहिस्सलाम की जात की भी जो मुखालफत है, या आपकी जो मजाक उड़ाने या ठट्टे करने या ये जो कार्टून बनाने, इसलिए कि वो नहीं जानते उनको। और कुरान का भी इनकार सबब यही है कि उन्होंने अहाता नहीं किया इस इल्म का। अहाता करना क्या होता है, पूरी तरह समझ लेना, पूरी तरह समझा ही नहीं है इसको, और बस इनकार पे खड़े हो गए। वलम्मा यतीम तावीलू, और उन हालांकि उनके पास तो आई भी नहीं है इसकी अभी तावील, इन यानी तावील का मतलब क्या, हकीकत इसकी जो असल है वो तो इनको अभी पता ही नहीं है कि ये क्या बता रहा है, इसकी डेप्थ में तो उतरे ही नहीं है, और वो पहले ही इनकार करने बैठ गए। ना इन्होंने अहाता किया इसके इल्म का, ना इन्होंने इसकी असल को समझा, और तावील का मतलब एक नतीजा भी होता है, नहीं इसके अंजाम को भी नहीं देखा कि जो इसके ये क्या कलाम है और इसके बताए हुए अंजाम को जानना ही नहीं, तो फिर क्यों इसका इनकार करते हैं। ये ऐसे ही है ना जैसे आज लोग, कितने लोग उठ के खड़े हो गए, नहीं जी ये हदीस तो बाद में लिखी गई, अब हदीस का इनकार कर दिए। अगर आप उनसे पूछें ना, यकीन करें 100% मैं आपको ये बात कहती हूँ, इनकी अक्सरियत ये जानती ही नहीं है कि हदीस कैसे कंपाइल हुई, क्या हदीस की किताबें हैं, हदीस में है क्या, कभी उन्होंने हदीसों की किताबों को पढ़ा हो, कभी उन्होंने इल्मुर रिजाल हासिल किया हो, कभी उन्होंने ये तारीख जानी हो, कुछ भी नहीं मालूम, और बस एक बात कह देना हम नहीं हदीस को मानते। ये तो गलत बात है, जब आपने किसी चीज को देखा ही नहीं, समझा ही नहीं अभी, तो आप उसका इनकार कैसे कर सकते हैं। और इसी तरह बहुत सारे आज गैर मुस्लिम भी यही काम कर रहे हैं कि बगैर समझे बगैर जाने कुरान पाक का इनकार, तो उनको इसका मतलब हमें ये दावत देनी चाहिए कि आओ कुरान को समझो, जब कुरान को समझ लो कि फिर कोई बात करना, फिर बताना। कदालिक कذب الذين من قبلهم, इसी तरह तो उन्होंने भी झूठलाया था जो पहले थे, वो भी कोई बात को समझे बगैर, अभी उसका अल्लाह ताला की जो वही होती थी उसको समझे बगैर ही इनकार कर देते थे। ये इंसानों का एक यानी पुराना वतीरा है। तो फंजुर कई फकाना आकबत जालिमीन, तो फिर देखो कैसा अंजाम हुआ जालिम को। इसका मतलब है वो जालिम है जो इसकी तकजीब करता है, इसका मतलब है वो जालिम है जो इसको बगैर जाने इनकार कर रहा है, अहाता किए बगैर इसके इल्म का। और ये जिस को ये इसका इल्म हासिल हो जाए उसके अंदर तो एक इनकलाब आ जाता है। अल्लाह ताला ने फरमाया इस कुरान को तो हम पहाड़ पे उतार देते तो वो रेजा रेजा हो जाता, अल्लाह की खशियत से। ये ऐसा कलाम है, तो ये तो इंसान का दिल है, अगर वो दिल जरा भी उसके अंदर कोई वो सलीमुल फितरत है, जरा भी उस वो उसके अंदर कोई समझ बूझ है तो वो दिल जरूर बदलता है। जितने लोग मुसलमान होते थे उस जमाने में भी, उनको भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कुरान के जरिए तबलीग करते थे, ये कुरान ही सुनाते थे। तो ऐसा नहीं है कि वो उनको कोई और लेक्चर दिए जाते थे, बस कुरान की आयात उनके सामने रख दी जाती थी, वो कुरान को सुनते थे और उनके दिलों पे ऐसा असर करता था क्योंकि उनको समझ में भी आता था ये कुरान। तो जब वो दिल पे असर करता है इंसान फिर माने बगैर रह नहीं सकता। एक हजरत दमाद अजदी रजी अल्लाह तआला अन्हु जमाने जाहिलियत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त थे, तो मक्का आए तो लोगों ने बताया कि वो तो दीवाने हो गए, तो उन्होंने कहा कि अच्छा फिर मैं तो झाड़ फूंक का माहिर हूँ, तो मैं ऐसे करता हूँ उनका इलाज करता हूँ ताकि उनको सेहत हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अपना वजह बयान की, तो आपने पहले कलमा शहादत पढ़ा, अल्लाह ताला की हमदो सना की, उसके बाद कुरान पाक का कुछ हिस्सा तिलावत फरमाया। तो दुम्माद अजदी इतने ज्यादा मुतासिर हुए, फरमाया दोबारा आप पढ़ें, फिर आपने पढ़ा, फिर फरमाया दोबारा पढ़ें, फिर पढ़ा आपने, 3 दफ़ा इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने तिलावत की। तो फिर कहने लगे मैंने ऐसा कलाम पहले कभी नहीं सुना, मैंने काहिनों के कलाम सुने हैं, शायरों के सुने हैं, जादूगरों के सुने, मगर ये कलाम तो समंदर की तह तक पहुंचने वाला कलाम है। फिर वो ईमान ले आए और अपनी पूरी कौम की तरफ से उन्होंने बैत की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में। इसी तरह तुफैल दौसी जो थे, तो उन वो भी जब मक्का आए लोगों ने कह दिया कि भाई वो ऐसे जादूगर हैं और अगर ये ना हो कि आपके ऊपर भी कोई जादू हो जाए, तो ऐसा कुछ पढ़ते हैं, तो ये कहने लगे कि मैंने सोचा कि अगर ऐसी बात है तो मैं कानों में रुई ठूंस लेता हूं। तो कानों में रुई डाल ली कि कहीं ये ना हो कि मेरे कानों में उनकी कोई बात चली जाए। मुशरिकीन मक्का का ये तरीका था ना, लोगों को इस तरह बदगुमान करते थे, ऐसे भड़काते थे लोगों को। तो कहते हैं कुछ देर तो ऐसे किया, फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैं इतने बड़े कबीले का सरदार हूँ और मैं कुरैश की बातों में आ गया और रुई ठूंस ली, आखिर मेरी भी तो कोई समझ है, कोई अक्ल है, ऐसे तो नहीं मुझे कोई कर सकता ना कि भाई कुछ बोल दिया और मैं उसकी वजह से दीवाना हो जाऊं। तो कहते हैं कि मैंने ना वो रुई निकाल दी और मैंने देखा हरम में कोई नमाज पढ़ रहा है, उनके चंद जुमले सुने तो मुझे महसूस हुआ ये तो बड़ा अच्छा कलाम है। अब मुझे अपनी बदगुमानी के ऊपर शर्मिंदगी हुई कि मैं क्यों पूरा गुमान कर रहा था। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, नमाज से फारिग हुए तो ये उनके पास गए और बताया कि मैं फलां फलां कबीले से हूँ और मैं आपके बारे में बड़ा बदगुमान हो गया था, लेकिन मैंने आपके ये चंद कलिमात सुने, मुझे तो बहुत अच्छे लगे, तो मुझे इनकी तफसील बताएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह इखलास तिलावत फरमाई, सूरह फलक तिलावत फरमाई, और उन्होंने उसी वक्त कलमा पढ़ लिया। तो आपको पता है, हज़रत उमर के बारे में भी तो यही आता है ना, कहते हैं यही उनके इस्लाम लाने का असल में सबब बना था। वो तो जो उन्होंने अपनी बहन से सुना वो तो बाद में सुना था ना, लेकिन उससे पहले हरम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह हक्का की तिलावत फरमा रहे थे, तो ये खड़े होकर सुन रहे थे। कुरान पाक का असर इतना दिल पे हुआ, अरे मैं हैरान हो रहा था कि कैसा कलाम है ये, इतना पुरअसर कलाम। एकदम मेरे दिल में ख्याल आया, ये आदमी ज़रूर कोई शायर है, इसीलिए इतनी खूबसूरत ये कलाम इनकी जुबान मुबारक से अदा हो रहा। तो कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पढ़ा, इन्नहु लकौलु रसूलिन करीम व मा हुआ भी कौली शायर कलील अम्मा तुमिनो। सूरह हाका की आयत है ना, कि ये रसूले करीम का कौल है, किसी शायर का नहीं है, लेकिन तुम लोग कम ही ईमान लाते हो। तो मैंने अपने दिल में सोचा, अगर ये शायर नहीं ज़रूर काहिन है, इसको तो पता चल गया कि मैं क्या सोच रहा हूँ। इसी वक्त आपकी ज़ुबान मुबारक से अल्फाज अता हुए, वला भी कौली काहिन खलील अम्मा तदक्करूं, ये किसी काहिन का भी कॉल नहीं है, नहीं तुम कम ही सोचते हो। तंजीलुम में रब्बिल आलमीन, ये तो रब्बिल आलमीन की तरफ से नाजिल करता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से ये अल्फाज जो अदा हुए हैं, तो उनसे इनके दिल के अंदर इस्लाम का जो सबसे पहला तासुर दिल पे जो नक्श हुआ है ना, वो इस कुरान को सुन के इस तरह से हुआ था। और बेशुमार बेशुमार और भी सहाबा के जो इस्लाम लाने की दास्तानी है, उनके पीछे आप देखिए कुरान है जिसने असर किया। कुरान असर करता है, इसका अपना एक इफेक्ट होता है दिल के ऊपर। और इसीलिए मैंने कहा ना कि ये हक है, ये अपने आप को खुद मनवाएगा, ये अपना खुद सबूत है। और यही वजह है कि हम लोगों के कहते हैं कि कुछ भी नहीं, ना हम कोई फिरके की बात करेंगे, ना हम को और बात करेंगे, आप कुरान से जुड़े, कुरान की तरफ आए। ना हम आपको ये कहेंगे आप हिजाब लेना शुरू कर दें, आप ये हराम छोड़ दें, आप ऐसे कर दें, कुछ भी नहीं कहना आपको, बस इस कलाम के साथ लोगों को जोड़ना। ना आपको उनको शर्म दिलाने की जरूरत है, अच्छा तुम अब ये करती हो और देखो तुम कुरान पढ़ रही हो, कुरान उसको खुद ही चेंज कर देगा। ये वो कलाम है जिसने पत्थर जैसे दिलों को तोड़ दिया। तो अगर कोई सलीमुल फितरत है तो ये खुद अपना काम करता है, ऐसे ही नहीं वो इसको जादू कहते थे। क्यों कहते थे जादू, जादू ही क्यों कहा उन्होंने, खुद ही सोचा आपने कभी? वाकई ये ऐसा असर रखता है कि जिंदगियां बदल जाती हैं। तो वो पागल हो रहे थे कि लोगों को हो क्या जाता है, कैसे चेंज हो जाते हैं इतने, क्या आ जाता है इनके अंदर? तो शायद इनको किसी ने जादू ही कर दी। नहीं, ये जादू नहीं, ये तो वो चीज है जो जिंदगियों को बदल देने वाली। तो इस कलाम के अंदर बड़ी ताकत है और बड़ी कशिश है। जब लोगों को सुनाया गया, जिन लोगों को ये कुरान पाक समझ भी नहीं आता था, एक तरफ उनको कुरान सुनाया गया, फिर उसके बाद वैसे ही अरबी जुबान में कुछ ऐसे ही बोलने लगे वो सुनाए, उन्होंने कहा नहीं इसका असर है। और आप किसी खूबसूरत कारी की आवाज़ में कुरान पाक को सुनते हैं, तो चाहे जिसको समझ नहीं भी आता हो ना, वो भी ऐसे दिल करता है कि आप सुनते रहे। वमिन हम मई यु मिनू बिही, और इनमें से कोई तो है जो इस पे ईमान लाता है। वमिन हम मल्ला यु मिनू बिही, और कोई ऐसे हैं जो ईमान नहीं लाते। और ये आज के लिए भी है और अगले जमाने तक के लिए। देखें सहाबा में भी कई ईमान लेकर आए, हजरत उमर हालांकि बड़े सख्त समझे जाते थे, लेकिन देखें जब ईमान ले आए तो कैसे मोम हो गए। और कई बदनसीब ऐसे हैं कि जो इसको भी ना मानेंगे, अबू जहल जैसे, अबू लहब जैसे, उन्होंने नहीं मान के दिया, हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से इस कलाम मुबारक को सुना। रहती दुनिया तक ऐसे लोग होंगे जो अगर कोई हठधर्मी में जिद में पड़ जाए और कहे कि नहीं मैंने मान के ही नहीं देना, तो वो कहेगा सूरज निकला हो, कहे सूरज है ही नहीं। अब क्या ऐसे इंसान का कर सकते हैं जो ढीठ हो गया हो, जो जिद्दी हो गया हो, जो कहे कि मैं ना मानू, उसका तो कुछ नहीं इलाज है। हाँ मगर उनका दिल जरूर गवाही देता है कि ये सच है। तो हम तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कहने वाले हैं कि हम इस पे ईमान रखते हैं, फिर भी अगर इससे दूर रहें तो कितनी बदनसीबी है, कितनी अफसोस है कि जिस कलाम को सुन के वो जो मुशरिक थे, जो जाहिल थे, जो काफिर थे, वो बड़े बड़े मर्तबों वाले हो गए, तो हम तो पैदाइशी मुसलमान, पैदा ही मुसलमानों के घरों में हुए, हमने आंख खोली तो इस्लाम को ही देखा और फिर भी हम इससे दूर रहे, तो कितनी बदनसीबी की बात है कि दूसरे आके बाहर से इसको ले लें और ऊंचे मर्तबे पा लें और इसके लिए कुर्बानियां दे के और फिर इसको पाए, और हमें यानी सब चीज हमारी फेवर में होते हुए और घर बैठे मिलते हुए भी हमें कि कोई परवाह ही ना हो, तो हमने फिर इस कुरान का हक तो ना अदा किया अगर हमारे ये रवैये हैं। तो अल्लाह ताला व रब्बुका आलमु बिल मुफसिदीन, अल्लाह ताला फसाद करने वालों को खूब जानता है। यहाँ पे फसाद करने वाले कौन है? वो जो नहीं ईमान लाते, पीछे देखिए ना बात किसकी हो रही है, जो नहीं ईमान लाते वो फसादी हैं। हम कहें हम तो नहीं फसादी, लेकिन जो इसके ऊपर ईमान नहीं लाया उसकी जिंदगी सिवाय फसाद की और कुछ नहीं, वो फसाद ही मचाएगा। वह इन कदबू को, और अगर उन्होंने झुटलाया आपको, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटलाने का मतलब क्या कि आपकी रिसालत को झुटलाया। आपकी रिसालत किस चीज से बनती है? हाँ? वही से ना, वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उनके अंदर पहले भी थे, तो वो तो आपको कुछ नहीं कहते थे, बल्कि आप बड़ी उनकी फेवरेट पर्सनैलिटी थे, सादिक और अमीन कहते थे, बड़े उनके फैसले को मानते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरे अस्वद का जो फैसला किया था तो इस्लाम से पहले की बात है, बड़े इन्होंने इज्जत से साथ आपका फैसला सुना। आपको देखते ही उन्होंने सोचा कि अच्छा ये आदमी सबसे पहले आ रहा है ना, तो ये तो कोई अच्छी बात करेगा, तो बड़ी इज्जत थी। लेकिन झूठलाना किस चीज का था? आपकी पर्सनैलिटी को नहीं, आपकी रिसालत को। और आप रसूल, क्या चीज आपको रसूल बनाती है? अल्लाह ताला की भेजी हुई वही ने आपको रसूल बनाया ना, तो इस आपको रिसालत को झुठलाना का मतलब है वही को झुठला देना। तो अगर आपको झुठलाते रहते हैं, और ये अभी कोई इनिशियल बात नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलाम सुनाया और उन्होंने झुठला दिया, तो उसकी बात नहीं हो रही, ये लास्ट स्टेज की बात हो रही है। आप बताते रहे, आप दलायल देते रहे, आपने मुआवजा दिखाया, आपने उनको तरह तरह से कायल करने की कोशिश की, आपने अपनी पूरी मेहनत लगा दी, लेकिन वो नहीं माने, वो फिर भी झुठलाते रहे, और कोई अब ऐसी वजह नहीं रह गई झुठलाने की सिवाय इसके कि उनकी जिद है कि हमने नहीं माना। फकुल, तो आप फिर कह दें, अब इस स्टेज पे आप आके कह दें, जब आपने अपनी पूरी एफर्ट लगा ली है, पूरी मेहनत लगा ली है, जरा भी कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, गिव अप नहीं किया, तब आप कहेंगे ली अमली वलकुम अमलकुम, मेरे लिए मेरा अमल है ठीक है, तुम्हारे लिए तुम्हारा अमल है, अंतुम बरी हूं ना मिम्मा आमलू वाना बरी हूं मिम्मा तामलू, मैं उससे बरी हूं जो तुम शिर्क करते हो, कुफर करते हो, गलत काम करते हो, और तुम उससे बरी हो जिस जो मैं कर रहा हूं, ठीक है ना, तुम्हारी मेरे से पूछो नहीं है ना मेरी तुमसे पूछो नहीं है। ये तब होगा कि जिस वक्त आप सब कर चुके हैं, अगर आपने अपनी पूरी कोशिश नहीं की है तो जालिम उस दिन खड़े होकर कह सकते हैं कि अल्लाह इन्होंने नहीं हमें बताया था, इनके पास तो तेरा कलाम था, या अल्लाह इसने तो मुझे कभी नहीं बोला था, इसने तो नहीं मुझे राह दिखाई थी। ठीक है, अब ये एक जवाब है उस माशरे के लिए जो मान के ना देने वाला है, या जो लोग खुद भी नहीं कायम है और दूसरों को भी नहीं कायम रहने देते, जो दूसरों के भी पीछे पड़ जाते हैं, तो उनको कहे नहीं आपसे मेरी पूछ नहीं होनी, आप अपना काम करें, मैं अपना काम करूंगी, ना मुझसे आपकी पूछ होनी, ना आपको मुझसे मेरी पूछ होनी। लेकिन ये बाज लोग समझते हैं, हमने बस एक दफा ही बताया तो उसके बाद हम ये कहने लगे नहीं, ठीक है। और ना ये करना है कि अच्छा अब वो तो मान नहीं रहे, वो तो मानेंगे ही नहीं, तो हम ही झुक जाते हैं, हम यूनिटी ले आते हैं, हम देखे ना फिर ऐसे तो सही नहीं है, हम भी आपको मान गए, आपका भी अच्छा है और हमारा भी अच्छा है, ना हम आपको गलत कहते ना आप हमें गलत कहे, नहीं ये अप्रोच तो मोमेंट की कभी हो ही नहीं सकती। देखिए अगर वो भी अच्छे हैं और उनका भी सारा जो भी जो वो अकीदा रखते हैं वो भी अच्छा और हमारा भी अच्छा, तो आप क्या यूनिक चीज लेकर आए हैं, आप क्या तौहीद के प्रचार करते फिर रहे हैं फिर। हाँ ठीक है शिर्क वाले दूसरे शिर्क वालों को ये कहें तो समझ आती है कि भाई मैं इसको शरीक ठहराता हूँ, कोई दूसरी चीज को शरीक ठहरा रहा, कोई तीसरी को, तो वो कहें भाई हमारे एक जैसे ही हैं, आप भी हमें माने हम आपको मानते हैं, हम सारे ही ठीक है, सारे ही शिर्क में है ना। लेकिन कैसे हो सकता है कि तौहीद तो बिल्कुल ऑपोजिट है शिर्क के, कैसे हो सकता है आप ये कहें तुम भी सही हो हम भी सही हैं। नहीं आपको ये ऐलान करना होगा और आपको ये अपने आप को उससे अलग करके दिखाना होगा कि नहीं मेरा अमल मेरे साथ है, तुम्हारा तुम्हारे साथ है, हम हमारे रास्ते यानी अलग हैं, हमारे रास्ते एक नहीं हो सकते, हमने आज क्या सोच लिया मैं भी अच्छी वो भी अच्छे, नहीं, किसी को गलत नहीं आपने कहना, है ना, वो भी ठीक है अपनी तरफ से तो वो भी सही कर रहे हैं ना, तो आप ना किसी को गलत कहें, कैसे नहीं गलत कहें, जो गलत है उसको गलत कहेंगे नहीं तो आपका सही कैसे है फिर, अगर देखे ना मैं भी सही आप भी सही तो फिर मसला क्या है। कहते ना मसलों से बचने के लिए तो दीन हमें अलग अलग करता है, तो आप मसलों से बचने के लिए आप ऐसा करें कि किसी को भी ना कुछ कहें, ठीक है। तो आपने बताना है ये है जो लाइन, इसके उस तरफ तुम और इस तरफ हम, तभी बात होगी कि ये हक है और ये बातिल है। देखिए 1 + 1 2 ही हो सकता है, 3 नहीं हो सकता, ना आप कहें नहीं 3 भी सही है और 2 भी सही, तो नहीं हो सकता, एक ही चीज सही होगी, या तो तौहीद सही है या शिर्क सही है। जिस दिन आपने कह दिया ना कि शिर्क भी ठीक है कोई मसला नहीं, तो आपने तो वैसे ही तौहीद का इनकार कर दिया, आपको एक राह लेनी होगी, या तो तौहीद का रास्ता है या शिर्क का रास्ता। आज मुसलमान अपने आप को असिमिलेट करने के लिए, उनके साथ प्यारे बनने के लिए बहुत सारे ऐसे काम करने लगे हैं और बहुत सारी ऐसी चीजों को मानने लगे हैं, जो कि हमारा मानने का मतलब ये है कि हम अपनी चीज को मशकूक कर दें कि जो हम कर रहे हैं वो ही डाउटफुल हो गया, आपने उसको डाउटफुल कर दिया, वो तो बिल्कुल ऑपोजिट कहता है। अपने आप के दीन पे मजबूत रहना है और उसके बाद निगेट करना है आपका, तो कलमा ही ला से शुरू होता है, ला इलाहा से, इल्लल्लाह तो बाद में आता है, लेकिन आपने जब ला इलाहा पे ही कॉम्प्रोमाइज कर लिया तो आगे क्या है, जब आपने उनकी नफी की तो फिर आपने कहा कि वो निगेट करें पहले उसको कि वो गलत है, कोई इलाह है ही नहीं कोई और, फिर आप कहते हैं इल्लल्लाह। तो तुम अपना काम करो मैं अपना काम कर रही हूं, ये नहीं कि तुम अपना काम करो मैं अपना काम कर रही हूं, हम दोनों ही अच्छे हैं, ये नहीं, ठीक है। अमिन हम मैस्तमीउना इलैक, और उनमें से कुछ ऐसे हैं जो कान लगाते हैं आपकी तरफ, अच्छा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिसों में आते भी थे, बड़े को आके सुनते भी थे, कान लगा के सुन भी रहे हैं, तो लेकिन देखें जो कोई गौर से सुन रहा हो जरूरी नहीं है कि वो हिदायत लेने ही आया हो, लोगों की बहुत सी किस्में हैं ना, जरूरी नहीं वो हिदायत लेने ही आया, वो किसी और एजेंडे के साथ भी आ सकता है। तो अब अगर ये बताइए, अगर कोई बहरा है और वो बड़ी गौर से आपकी तरफ मुतवज्जे होके ऐसे लग रहा है सुन रहा है, तो क्या उसको कुछ सुन रहा होगा? चाहे वो आपको कितना ही नजर आ रहा है कि कितनी तवज्जो से ये मेरी पत्नी बात सुन रहा है, लेकिन वो तो बहरा है, बाद में पता चलता है। अफा अंता तुस्मिउ सुम्मा वलो कानू ला याकिलून, क्या आप बहरों को सुनवा सकते हैं और अगर वो अकल भी ना रखते हो? आप यानी अगर वो चलो बहरा है कोई और उसके बाद आप उसको कुछ समझाना चाहें तो कोई शायद इशारे से आप उसको समझा दें, लेकिन अगर उसको अकल भी नहीं है तो उसको कैसे समझा भी सकते हैं? तो ये ना सिर्फ बहरे हैं बल्कि अकल भी नहीं रखते हैं। सुनने की तो है ही नहीं सलाहियत, समझने की भी नहीं है। अल्लाह के नज़दीक ऐसे हठ धर्म लोगों की यही मिसाल है। समझ आई बात? कि ना जिनके पास समात है और ना जिनके पास कोई अकल है, तो ऐ नबी आप उनको कैसे समझा सकते हैं, ऐसे लोगों को कैसे सुनवा सकते हैं? ये देखे ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हिर्स थी लोगों के लिए, जो उन तक बात पहुंचाने की तड़प थी, लेकिन जिसने अपना दिमाग ही बंद कर दिया क्या करेंगे उसका? तो दाई जो होता है ना, जब वो परेशान होने लगता है तो उसको ये बात समझ लेनी चाहिए कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों के ऊपर भी लोग ऐसे रिएक्शंस करते थे, तो हमारे और आपके जैसे लोग अगर कुछ बात बताते हैं और कोई नहीं सुनता नहीं मानता तो उस पर डिसहार्ट होने की ज़रूरत नहीं है। वमन मिन हो मई यंजरू इलैक, और उनमें से कोई ऐसे हैं जो आपकी तरफ देखते हैं, इतनी गौर से देख रहे हैं जैसे लगता है कि ये पता नहीं कितना सुन रहे हैं ना, फिर क्या पता चलता है, फिर किसी ने बताया ये तो अंधा है, आपने समझा मेरी बात बड़ी गौर से सुन रहा है, मेरी तरफ ऐसे ही करके देख रहा था, तो पता चला वो तो अंधा है। अफ अंत तहदिल उमिया, क्या फिर तू राह दिखाएगा अंधों को? बोला क्या ना ला युबसिरो, अगरचे हो ना हो वो देखते ना, उनकी बसारत भी नहीं है बसीरत भी नहीं है, आंखें रखने के बावजूद देखते ही नहीं, ऐसे अंधे हैं ये। अब थे तो अब्दुल्ला इब्ने मकतूम भी अंधे, मगर दिल की आंखें अंधी नहीं थी ना। तो असल में होता ये है कि इंसान की ये जो जिस्म की आंखें ना, ये अंधी नहीं होती बल्कि दिल अंधे हो जाते हैं। कुरान कहता है आंखें अंधी नहीं होती, दिल अंधे हो जाते हैं। लोग अच्छे भले देखते हैं, अल्लाह की निशानियां भी देख रहे हैं, कुरान का भी कहीं सुनाई दे देता है, उनके कानों में चला जाता है, लेकिन दिल ऐसे अंधे हैं कि वो इस तरफ आते ही नहीं। अल्लाह अकबर। अब हजरत इब्ने अब्बास से रिवायत है कि मैं तुम्हें इस हाल में ना देखूं कि तुम किसी जमात के पास जाओ और वो अपने किसी और काम में मशगूल हो, और इस हालत में तुम अपने वाज उनको सुनाना शुरू कर दो, बल्कि तुम्हें चाहिए कि खामोश रहो और जब वो तुमसे फरमाइश करें तो उनको सुनाओ, और वो उसको ख्वाहिश से सुने, उसको खुशी के साथ सुने, यानी उनको चाहत हो तो फिर उनको सुनवा दो। नहीं, उनका कहने का मकसद ये है कि बाज़ दफ़ा ऐसी मजलिसें होती हैं कि आप कहते हैं बस इनको सुनवाए जाओ सुनवाए जाओ, पता नहीं मैं यहाँ बैठ गए तो ज़बरदस्ती इनको सुनवा जाओ, हालांकि वो ज़रा भी इसके अंदर वो नहीं होते, इंटरेस्ट नहीं ले रहे होते, और बल्कि वो चाह रहे होते हैं कि किस वक्त ये ख़त्म करें और हमारी जान छूटे, हमें इस जो अजियत है इससे हम निकलें। और वाकई ऐसा होता है, बस दफ़ा लोग दरस पे बुला लेते हैं, वो ऐसी मजलिस होती है जिसमें कोई शादी ब्याह है या कोई ऐसी चीज़ है, वाकई ऐसी लगता है कि ये बहरे हैं या अंधे हैं, ना इनको कुछ सुन रहा है, ना कोई जैसे दिल में बात उतर रही है, ना कोई अकल है, ना कोई समझ है। तो इसी वजह से इब्ने अब्बास ने फरमाया कि मत सुनाओ, यहाँ पे लोग ऐसी चीज़ें जो नहीं सुनना चाहते वहाँ पे मत सुनाओ, बल्कि तुम्हें चाहिए खामोश रहो, जब वो तुमसे फरमाइश करें तो उनको सुनाओ। यानी आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पे ये वो लोग हैं जो कि इस अल्लाह के कलाम को नापसंद करेंगे। तो अल्लाह के कलाम की एक इज्जत है, यहाँ पे लोग नापसंद कर रहे हैं उनको मत कहें। वो कहता है जबरदस्ती पता नहीं इनको सुना देंगे तो आज क्या हमारी बरकतें हो जाएंगी और ये हो जाएगा, हालांकि ये बेअदबी है। तो सुन के जो अनसुनी करना है ना, ये जो जिनका बता के कि आप सुनवा सकते हैं बहरों को, ये सुन के अनसुनी करना है। कानों में तो आवाज जा रही है लेकिन सुनी अनसुनी। ऐसे ही बिल्कुल आप देखें ना, जानवर भी तो सुनते हैं लेकिन क्या वो सुन के समझते हैं कोई बात? कानों में तो उनकी भी आवाज जा रही है, उनकी भी तो समात है, लेकिन क्या वो कुछ समझते हैं? नहीं समझ रहे ना। इसी तरह इंसानों का भी हाल हो जाता है कि आवाज उनके कानों में जाती है, टकराती है उनके कानों के पर्दों से, लेकिन उसके बाद कुछ भी नहीं। ऐसे लगता है कि जैसे कि बिल्कुल, ये बाज दफा तो मुसलमानों का ये हाल है तो दूसरों का तो आप छोड़ ही दें। तो जो सुन के भी अनसुनी करना है ना, वो भी यही है कि इंसान बहरा हो गया, वो भी बहरे हैं अल्लाह के नजदीक। तो अल्लाह ताला ऐसे बहरेपन और ऐसे अंधेपन से बचाए और दिलों के अंधे होने से अल्लाह ताला बचा ले। क्योंकि जब इंसान के अंदर ही बात नहीं जाएगी, जब उसके दिल में उतरेगी ही नहीं और उसको समझ ही नहीं आएगी, तो क्या अमल करेगा? और वो क्या ईमान लाएगा? इन्नल्लाह ला यज़लिमुन्नास शैआ। देखिए अल्लाह ताला ने फिर फरमा दी ना, अल्लाह नहीं लोगों पे जुल्म करता। कुछ भी जुल्म अल्लाह ताला की तरफ से नहीं होता। इंसान सोचता है कि भाई इनको क्यों सजा मिल गई, ये इनको क्यों नहीं है, इनको ईमान लाने की तौफीक अल्लाह ने दी। अल्लाह नहीं जुल्म करता किसी लोगों के ऊपर। देखो अल्लाह ने इनको कान भी दिए, इनको आंखें भी दी। कानों के बावजूद कोई बहरा हो जाए तो उसका क्या कर सकते हैं? अकल होने के बावजूद कोई ऐसा हो जाए जैसे कि बिल्कुल अकल ही नहीं, समझ ही नहीं। लेकिन अपनी दुनिया के कामों के और दुनिया के हर तरह की चीजों की अकल बाज दफा इतनी होती है, इसको जाहिर अल हयात दुनिया, जो दुनिया की जाहिरी का इल्म बहुत है। कुरान भी ऐसे लोगों के बारे में कहता है, दुनिया का जाहिरी इल्म तो जो मर्जी पूछ ले, लेकिन अगर आपको दीन की बात करते तो साफ कह देते नहीं भी इस बारे में हमें कुछ नहीं पता, ये वो हमारा तो फील्ड ही नहीं, हमने तो कभी इसको जाना ही नहीं। और कोई बहुत ही अपने आप को इंटेलेक्चुअल समझ रहा तो वो इधर की उधर ला के बोलने लगते। इससे पता चलता है कि इनको वक्त था, मौका था, इन्होंने हर एक दूसरे इल्म पे मेहनत की थी, लेकिन एक कुरान, एक दीन को इस काबिल ही नहीं समझा कि इसमें भी कभी मेहनत करते। बैचलर्स किया, मास्टर्स किया, 14 साल, 16 साल, 20 साल, आजकल तो 12 14 साल तो किसी की है ही नहीं तालीम, इतनी इतनी सालों की तालीम है। कब से एक बच्चा शुरू होता है, जब से वो यानी थोड़ा बोलना शुरू करता है तब से उसको स्कूल में डाल देते हैं हम, और कब तक जवान होते तक वो पढ़ता रहता है। और कोई ये नहीं कहता कब ये खत्म होगा ना पढ़ाई का, कब खत्म होगा, खत्म पढ़ना ही है। वो टीन एज में गया, वो जवान हुआ, लेकिन कोई एतराज नहीं। मगर दीन के इल्म के बारे में फौरन कहते हैं कब खत्म होगा ना ये, कि जैसे कि हमारे ऊपर एक बोझ है जो जिसको हमने उतार के रखना है। खत्म करने की क्यों जल्दी है? खत्म करके कहीं भागना है इसे? ये तो रूह की गिज़ा है, ये तो जिंदगी का एक नक्शा है जिसके मुताबिक इंसान ने चलना है, ये तो गाइडलाइन है। तो अल्लाह जुल्म नहीं करता लोगों पे कुछ भी। अल्लाह ताला ने तो खोल खोल के आयात बयान कर दी, अल्लाह ने तो अपने कलाम को महफूज करके हमारे हाथों में दे दिया। कोई इंसान ये नहीं कह सकता मेरे पास अल्लाह ताला की कोई बात आती तो मुझे पता चलता ना, मेरे पास आई नहीं कोई बात, और महफूज। लेकिन अक्सर लोग अनफुसहुम यज़लिमून, अपनी जानों पर जुल्म करते हैं। ये जुल्म है अपनी जान पे, अंधे बहरे हो जाना। ये जुल्म है अपनी जान पे कि इंसान दो कश्तियों का सवार हो जाए, इंसान कहे वो नहीं, आप भी अच्छे हम भी अच्छे। ये जुल्म है, जुल्म में इंसान जो है अकल रखते हुए बेअकल बना रहे, और सबसे बड़ा तो जुल्म वो कर रहे हैं जो के कहते हैं कि हम ईमान रखते हैं अल्लाह पर, हम ईमान रखते हैं कि आखरत पर है, हम ईमान रखते हैं कि ये दुनिया की जिंदगी के बाद एक और जिंदगी है जिसमें सवाल जवाब हिसाब किताब है, जन्नत है जहन्नम है, सब कुछ के पर हम ईमान रखते हैं। उसके बाद क्या, उसके बाद फिर भी अंधे हैं, बहरे हैं, और फिर भी बेअकल बन गए, उसके बाद अकल बंद हो जाती है। वो तो है ही अंधे बहरे गूंगे बने हुए जो नहीं मान के देते, और इनको क्या हो गया जो मान के भी उसके बाद ना समझे। वही यौम याशुरुहुम, तो फिर ठीक है, देखिए सीक्वेंस आप आयात का देखें, ऐसे नहीं लगता जैसे गुंदी हुई आयतें एक दूसरे के साथ एक के बाद एक। तो अच्छा तुम ऐसा रवैया रखते हो और नहीं मानते, तो अल्लाह ने तो किसी लोगों पे जुल्म नहीं किया, लोग तो खुद ही अपनी जानों पे जुल्म कर, अल्लाह तआला ने तो फरमा दिया ना वो कि कयामत के दिन, हदीस में आता है कि कयामत के दिन अल्लाह तआला फरमाएगा है मेरे बंदो मैंने अपने ऊपर जुल्म को हराम कर लिया, तुम भी नहीं, कयामत के दिन नहीं है सॉरी, ये वैसे ही एक हदीस कुदसी है, पहले ये बात बताते फिर वो वाली बताती कि मैंने अपने ऊपर जुल्म को हराम किया और तुम पर भी उसे हराम कर दिया, खबरदार एक दूसरे पर जुल्म हरगिज ना करना। और इस हदीस के आखिर में है जो कयामत के दिन का सीन है कि अल्लाह ताला फरमाएगा ऐ मेरे बंदो ये तो तुम्हारे अपने ही आमाल हैं जिनको मैं जमा कर रहा हूं, फिर तुम्हें उनका बदला दूंगा, बस जो शख्स भलाई पाए आज के दिन वो अल्लाह का शुक्र अदा करे, और जो इसके सिवा कुछ और पाए तो फिर अपने आप को मलामत करे। ये मुस्लिम की रिवायत, तो किसी ने आपको नहीं रोका ना, किसी ने आपका हाथ नहीं रोका, किसी ने आपकी अकल को बंद नहीं किया, किसी ने आपके कान आंखें नहीं बंद की, आप खुद ही अंधे बहरे बने रहे ना, तो फिर किसको मलामत करना चाहिए। लेकिन ये शायद बातें आज समझ नहीं आएंगी, आज समझ नहीं आएंगी, उस दिन समझ आएंगी यौम यहशुरुहुम, और जिस दिन वो इकट्ठा करेगा ना उनको तब पता चलेगा कअल्लम यलबसु इल्ला सआतम मिनन नहार, कि वो गोया के नहीं वो ठहरे दुनिया में, यानी दुनिया की जिंदगी उनकी कितनी थी उसमें कितना उन्होंने लाइफ स्पेंड की, इल्ला सआतम मिनन नहार, मगर एक घड़ी दिन की, और जगहों पे आता है दिन की एक घड़ी या रात की, बस दिन का एक हिस्सा या रात का, बस इतना सा कहते हैं घंटे को, और सा एक हिस्से को भी कहते हैं, एक पहर को भी कहते हैं, यानी अ पार्ट ऑफ अ डे, एक होल डे भी नहीं, एक होल डे भी नहीं, हम एक दिन भी नहीं रहे, ये नहीं कहेंगे कि हम तो बस एक दिन रहे थे, एक दिन का भी कुछ हिस्सा। ये बात उस वक्त समझ आ गई, आज क्यों नहीं आती, आज क्यों नहीं आती ये कि अल्लाह ताला देखिए आज दारुस्सलाम की तरफ बुला रहा है, लेकिन हमें परवाह नहीं, हम रीझे में इसी इन्हीं चीजों के लिए। लेकिन जिस दिन गैब का पर्दा उठ गया ना, जिस दिन अल्लाह जमा करेगा ना, उस दिन लगेगा ये जो सारा है हमने यहाँ पे क्या हमने वेस्ट कर दी, थी छोटी सी तो जिंदगी थी, उसमें अल्लाह की फरमाबरदारी कर लेते तो कौन सा मुश्किल था, इतनी छोटी लाइफ में भी ना मैंने किया। अगर अगर पिछली भी अपनी जिंदगी देखें तो जितनी भी हमारी एज हो गई है, जाहिर है हम सब की जितने भी लोग बैठे हुए हैं, किसी की 20 साल 30 साल 40 50 60 जितने भी साल हमने अभी तक दुनिया में गुजार लिए हैं, वो क्या लग रहे हैं, ऐसे लग रहा है पलक झपकने पे, हालांकि वो भी साल थे ना, हर साल के 365 दिन आपने गुजारे ना, लेकिन अब क्या लग रहा है पलक का झपकना, 100 साल के बूढ़े से भी आप पूछ लेंगे तो वो भी यही कहता है कि पता ही नहीं चला, कल की बात है अभी, कल की बात है अभी। तो वहां जाके जब असलियत खुलेगी ना, तब तो बिल्कुल ही ये दुनिया की सारी जिंदगी ऐसे लगेगी कुछ भी नहीं थी। अब ये इतने से क्या, एक साथ दिन की एक साथ में भी हमारे लिए मुश्किल है कि हम अल्लाह की तरफ आ जाएं, या एक साथ दिन की है इसमें भी कोई ऐसा वक्त हो सकता है जो हम बेकार गंवा दें, जो हम वेस्ट कर दें, ऑलरेडी हमारे पास टाइम बहुत कम है, उसमें कौन वेस्ट कर सकता है। वो कहते हैं ना मुझे बड़ी प्यारी बात हमेशा लगती है कि जिसके पास एक ही छागल हो पानी की, एक लेदर बैग है पानी का, ठीक है, और वो किसी डेजर्ट में है और दूर दूर तक और कोई पानी नहीं, तो वो उस पानी से अपने पैर नहीं धोता, उस पानी को कहीं ऐसे ही वेस्ट नहीं करता। उसको पता है ये मेरी लाइफ है, कितना उसको केयरफुली यूज करेगा, एक एक कतरे को उसके, क्योंकि तो उसको पता है और पानी नहीं मिलना, मैं जहरा में हूं। इसी तरह ये जिंदगी है मेरी बहनों, ये जिंदगी वो है जो एक दफा ही मिलनी है, इसके बाद नहीं मिलनी, और ये वन टाइम, और गिनी भी है, और एक साथ की है, और इस साथ को हम वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसको हम उसे पैर नहीं धोने खड़ा हो जाएगा वो, यानी इसको हम इधर उधर नहीं लगा सकते, क्योंकि ये ही है जिसने के ऊपर डिपेंड करती है हमें हमारी हमेशा की जिंदगी, इनफिनिट लाइफ। तो देखें ये है जो हकीकत है जो वहां खुली है, ये है जो असल सच्चाई है, ये नहीं कि ऐसे लगेगा वहां जाके बस लग रहा है, नहीं, हकीकत यही है कि दुनिया की जिंदगी इतनी है, पलक झपकने की बात है, क्योंकि कयामत के दिन और जो वहां की जिंदगी है उसके मुकाबले में ये दुनिया की जिंदगी छोटी ही है, क्योंकि वहां पे तो बहुत लंबी है, समझ आई? और वैसे भी ये छोटी है, आप देखें हमारी तो वैसे ही बहुत छोटी है, हमारी तो एवरेज लाइफ आप वैसे ही देखें 60-70 साल है, वो है ना पुराने जमाने में एक आती है इसराइली रिवायत कि एक औरत आई अपने वक्त के नबी के पास, और उसने कहा मेरा बेटा 600 साल का होके फौत हो गया, वो इसके ऊपर बड़ी गमगीन थी, उन्होंने फरमाया कि तू इसके ऊपर रोती है, एक तो ऐसी उम्मत आएगी जिनकी उम्रें ही इतनी 60-70 साल होंगी, तो वो कहने लगी अच्छा फिर इतनी कम उम्रें होंगी तो उनको तो घर भी बनाने की जरूरत नहीं होगी। ओहो, उसने सोचा यानी इसी दुनिया के अंदर अभी ऐसे लोग आए हैं जिनकी उम्रें इतनी लंबी थी, तो उनको भी हमारी छोटी लगती, तो हम पता नहीं जाएंगे तो हमें कितनी छोटी लगेगी अपनी ये उम्र, ये अपनी जिंदगी कितनी मुख्तसर लगेगी, ऐसे ही लगेगा कि आंख बंद की और खोली और जिंदगी खत्म भी हो गई। और आप वाकई अपनी जिंदगी के ऊपर जरा गौर करके देखें कि इंसान शायद वक्त में भी बरकत जो खत्म हो गई है उसकी वजह से भी, कि इंसान एक पता भी नहीं चलता बड़ा हुआ, जाहिर बचपन तो कुछ समझ ही नहीं आता, खेल कूद में गुजर जाता है, तो वो समझ ही नहीं आया उसको कि कब गुजर गया, जवानी पढ़ाइयों के अंदर शादियां और बच्चों के अंदर गुजर गई, उसके बाद जब थोड़ी आंख खुली तो पता चला है बुढ़ापा भी शुरू हो गया, जिंदगी गुजर भी गई, इसी जिंदगी की कहानी है ये, इतनी तेजी से गुजर जाती है, और फिर इंसान सोचता ही रह जाता है कि किधर चली गई, ये तो मेरे हाथों से ऐसे निकल गई जैसे आपने हाथ में रेत पकड़ी हो, फिसल गई आपके हाथ से, तो ये उस पानी की छागल की तरह है जिससे पैर नहीं धोने हमने, ठीक है, इसको बचा के कारामत तौर पे लगाना है, क्योंकि यही हमारा सर्वाइवल है। ये तआरफूना बैनहुम, वो पहचान रखते होंगे आपस में, अच्छा फिर ये भी नहीं होगा कि एक दूसरे को जानते नहीं, पता होगा ये मेरे माँ बाप, ये बहन भाई, वो मेरे दोस्त खड़े हैं, वो फलां मेरे हमसाए, सबको पहचानते होंगे, ऐसा नहीं होगा कि की हवलना की वजह से पहचानना ही बंद कर दे, लेकिन मुसीबत ये कि पहचानने के बावजूद उनको नहीं पता होगा कि एक दूसरे की क्या मदद करनी है, हमने एक दूसरे के लिए आगे बढ़ के क्या करना, पहचान रखते होंगे आपस में तब भी एक दूसरे के लिए आगे बढ़ेंगे नहीं, एक दूसरे का बोझ नहीं उठाएंगे, अल्लाह हू अकबर अल्लाह हू अकबर। और इस चीज के ऊपर और ज्यादा दुख होता है ना, एक तो इंसान को ये कि फलाने मुझे पहचाना ही नहीं, अगर पहचान लेती तो फिर तो जरूर वो मेरी हेल्प के लिए आती, लेकिन अगर आपको ये पता हो कि उसने मुझे पहचान भी लिया था फिर भी उसने आंखें फेर ली, तो कितना दुख होता है। कद खसीर अल्लदीन कज़्ज़बू बिलिक़ा इल्ला, तहकीक यकीनन बड़े खसारे में वो लोग जिन्होंने अल्लाह की मुलाकात को झुठला दिया, जाहिर है इससे बड़ा क्या खसारा होगा कि वो जिंदगी जो आखरत के मुकाबले में सिर्फ इतनी सी थी कि जितनी आप उंगली, हदीस में क्या आता है, उंगली समुंदर में डबोएं और आप उंगली निकालें तो जो पानी उंगली पे लगा है, ये दुनिया की जिंदगी, इतनी सी जिंदगी के लिए उन्होंने अपनी आखरत दांव पे लगा ली, इसके फायदे के लिए, और इसमें गुम हो के इसी के धंधों में अपनी अल्लाह से मुलाकात को भूल गए थे, और इससे भी बढ़ के लोगों ने झुठला दिया, तो वो तो बड़े खसारे में, क्योंकि वो तो आज कुछ भी नहीं लेकर आए यहाँ के लिए, वमा कानू मोहतदीन, और ना वो हिदायत पाने वाले, उनको हिदायत ही नहीं मिली। तो ये एक बहुत बड़ी हकीकत है कि ये जल्दी खत्म हो जानी है, और उसके बाद आगे जवाब देना जहाँ पे कोई काम ना आएगा, चाहे वो पहचान भी रहे। तो देखिए हम आज कि हमारे वक्त किधर लग रहे हैं, हमारे माल किधर लग रहे हैं, हमारी जवानियां किधर लग रही हैं, हमारी जो हमारे पास स्किल्स हैं, हमारे पास जो भी हुनर हैं, जो हमारे पास सलाहियतें हैं, जो हमारे पास अक्ल है, जो हमारे पास औलाद है, ये किधर लग रही है, किधर जा रहा है सब कुछ, यहाँ के लिए या अल्लाह से मुलाकात करने के लिए। इम्मा नुरियन्नका, अच्छा अब ये एक बात वो लोग कहते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कि जब भी कहते थे ना अब कियामत है, कियामत है, उसको अब क्या ले आओ ना कियामत फिर, ले आओ ना कियामत फिर, ले आओ ना अजाब फिर, तो उनको कहा गया, उनके लिए जवाब है कि वह इम्मा नुरियन्नका, अगर हम आपको दिखा दें ए नबी, अगर हम आपको दिखा भी दें, बाद अल्लदी नाइदुहुम, बाज वो चीज जिसका हमने उनसे वादा कर रखा है, यानी अजाब का इनको झटका दिखा भी दें आपके सामने आपकी जिंदगी में, औ न तवफ्फयन्ना का, या हम आपको फौत कर दें और फिर आपके जाने के बाद इनके ऊपर अजाब आए, इन एनी केस फइलैना मर्जिउहुम, हमारी तरफ ही लौटना है हमको, वापस तो यही आना है। अने कुफारे मक्का जो इतने इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कब आएगा कब आएगा, तो ठीक है हम आपके सामने इनके ऊपर अजाब ला दें या आपके बाद लाने, इससे क्या फर्क पड़ता है, आना तो इन्होंने वापस हमारे पास ही, अजाब आ जाएगा तो जिंदगी की मोहलत तो खत्म हो जाएगी ना, जिंदगी की मोहलत खत्म हो गई, कयामत आ गई तो जिंदगी खत्म हो गई, उसके बाद कोई अमल करने का तो वक्त नहीं होगा, तो अल्लाह शहीद होना लामा यफालून, फिर अल्लाह ताला तो गवाह है उस पर जो वो करते हैं, अल्लाह ताला इनके अमाल से बेखबर तो नहीं है। वलिकुम ली उम्मत इन रसूल, हर उम्मत के लिए एक रसूल है, हर उम्मत के पास एक रसूल आया, हर बड़ी बस्ती में अल्लाह ने रसूल भेजा उनकी हिदायत के लिए, फइदा जाअ रसूलुहुम, फिर जब आ जाए रसूल उनका, कुदिया बैनहुम बिलकिस्त, उनके दरमियान इंसाफ के साथ फैसला कर दिया जाएगा, वहम ला युज़लमून, और वो जुल्म नहीं किए जाएंगे। लेकिन जब रसूल आ गया तो रसूल ने आके अल्लाह का पैगाम दे दिया हर उम्मत को, उसके बाद अगर वो नहीं मानते तो हुज्जत तमाम हो गई, अल्लाह ताला ने उनका एक्सक्यूज जो है ना खत्म कर दिया, अब वो ये नहीं कह सकते अल्लाह हमें नहीं पता था, अल्लाह ताला कभी इसके ऊपर नहीं पकड़ता कि जब हुज्जत तमाम ना हुई है, लोग इनोसेंट हैं उनको पता ही नहीं, उनके पास कोई खबर देने वाला आया ही नहीं और अल्लाह उनको पकड़ ले, मगर जब रसूल आ जाए, उसने इसलाह की कोशिश कर ली फिर भी लोग ना माने, तो तब अल्लाह ताला उनके दरमियान इंसाफ के साथ फैसला कर दे, तब अल्लाह का अजाब आता है। ठीक है, एक ये माना है, इसका दूसरा भी एक मतलब है जो कयामत वाले दिन के हवाले से, और उस मतलब के मुताबिक क्या है, वली कुल्ली उम्मत इन रसूल, हर उम्मत के पास एक रसूल है, हर एक उम्मत का एक रसूल है। ठीक है, फईदा जाअ रसूलुहुम, जब आ जाएगा उनका रसूल, यानी उम्मत के साथ उनका रसूल आएगा, कयामत के दिन उम्मत भी होगी साथ उनके, उनके रसूल को भी पेश किया जाएगा, रसूल भी खड़ा होगा, जैसे है ना आपने देखा होगा स्कूल वगैरह में असेंबली या कुछ होती है, तो हर टीचर अपनी अपनी क्लास को लेके खड़ी होती है, फिर वो अपनी अपनी क्लास को लेकर क्लासरूम में जाती है, ठीक है, जो बच्चे उसके क्लास में होते हैं। इसी तरह एक रसूल है, वो उनके ऊपर निगरान बनाया, वो उनके ऊपर दाई बना के भेजा गया। अब वो उनके साथ कयामत के दिन आएगा, फिर उस दिन वो रसूल कहेगा कि मैंने तो पहुंचा दिया या अल्लाह, तमाम कर दी ना, मैंने पहुंचा दिया। अब ये कयामत के दिन की बात है कि फिर उनके अंदर फैसला खुद ही अबैना हम बिल किस्ती व हम लाए, तो उनके दरमियान फैसला फिर कर दिया जाएगा, उनके ऊपर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा, वो सब कुछ इंसान को वही मिलना है जो उसने खुद किया हुआ, अपने हाथों की कमाई मिलनी है वहां पे। जुल्म की फिक्र नहीं, ये दुनिया के अंदर ही जुल्म होते हैं, करे कोई तो भरे कोई, दुनिया में ही जुल्म होते हैं कि वो पकड़ा जा रहा है जो बेचारा मजलूम है और दूसरे दंडनाते फिर रहे हैं। ये दुनिया ही है जिसके अंदर जिनके बड़े हाथ होते हैं वो हर बात से हर जुर्म से ही छूट के चले जाते हैं, निकल जाते हैं। अल्लाह अकबर, वो यकूलूना मता हाज़ा अलवादु इन कुंतुम सादिकीन, और वो कहते हैं कब आएगा वो वादे का वक्त ना अगर तुम सच्चे हो, कब आएगा। देखिए अब जैसे पहले बात हुई कि इनको बार बार ये इंतजार था कि आ जाए ना अब अजाब, आ जाए ना अब अजाब, जिसकी आप धमकी देते हैं वो कब आना है कह दीजिए, क्योंकि तो उनको ना ये एक तरीका मिल गया था कि इस तरह हम जिच करें इनको, एक दूसरे को यानी लेट डाउन करने के एक के तौर पे वो ये हरबा इस्तेमाल करते थे, हाँ तुम तो कहते हो ना तो लाओ ना फिर, उनको पता था वो लाएंगे तो नहीं है। कुल कह दीजिए ला अमली कुली नफसी दर्रों वाला नफा, अब इससे ज्यादा खुली क्या आयत हो सकती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला फरमा दें कि नबी आप कह दें मैं तो तुम्हारे लिए ना किसी नफे न, मैं अपनी जान के लिए ना किसी नुकसान का ना किसी नफे का मैं मालिक नहीं हूँ, इल्ला माशाल्लाह, मगर जो अल्लाह चाहे। यही इसी तरह की आयत ऑलरेडी गुजर भी चुकी है सूरह आराफ में, वहां पे नफा का लफ्ज पहले था, यहाँ पे नुकसान का पहले है। मैं नहीं मालिक हूँ, आप मुझे इतना बताइए कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नफे नुकसान के मालिक नहीं थे तो क्या हमारे बन गए मालिक, हमारे सारे नफा नुकसान के वो मालिक हो गए, जिसको चाहे नफा पहुंचाए जिसको चाहे नुकसान पहुंचाए, नबी भी उनसे मांगे आप भी उनसे मांगे वो आपको बचाने के लिए भी आ जाए, कब्र में भी आ जाए, हशर में भी खड़े हो जाए, इस दुनिया में भी बिगड़ियां बना दें, बेड़ा पार लगा दें, सब कुछ जो वो खुद फरमाए, जो बात अल्लाह ताला ने कुरान में फरमा दी, और क्या अल्लाह की बात हक के सिवा और कुछ हो सकती है। और ये सिर्फ कहने के लिए नहीं कही कि आप इनको कह दें जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, जस्ट एक सेंटेंस नहीं है, वाकई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी में भी अपने नफे नुकसान के मालिक नहीं थे, अगर मालिक होते तो आपके चचा आपके सामने इस तरह से बगैर कलमा पढ़े दुनिया से ना जाते, अगर आप मालिक होते तो आपके बच्चे आपकी जिंदगी में वफात ना पाते, और भी इस तरह की कई बातें, अगर आप मालिक होते नफा नुकसान के तो आपके सामने आपके सहाबा को टॉर्चर ना दिया जाता, अगर आप नफा नुकसान के मालिक होते तो उहद में शिकस्त ना होती, बेशुमार ऐसी चीजें, आपकी बीवी हजरत खदीजा दुनिया से चली गई वो ना जाती, वो आमुल हुजन ही ना होता, वो ताइफ का सफर ही आप ना करते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है, आप कह दें यानी अजाब लाना या जिसका वादा दिया गया है वो लाना मेरे बस में कैसे है, मैं तो अपने भी नफा नुकसान का मालिक नहीं हूं। लेकिन इस बात से हम बहुत ज्यादा कुछ सीखते हैं, एक आयत से हम उनको तो ये जवाब है ही, लेकिन बाकी हम सबको भी इससे समझ लेना चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं, अब्दुहू व रसूल, और बंदा खुदा नहीं होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिफात करेंगे जरूर करेंगे मगर अल्लाह की इज़्ज़त से ही करेंगे, तो अपने अकीदे को सही कर लें, कि वो अपनी मर्जी से हमें बचा बचा के ले जाएंगे और कोई हमें उस दिन पकड़ ही ना सकेगा। और या आज भी दुनिया में हम उन्हीं से मांगते हैं, वही आके हमें बचाएंगे, हम तो उनके उम्मती हैं। ऐसा नहीं है, कहीं इसका सबूत ही नहीं मिलता। ये बातें तो आपके सामने हैं, क्या इसकी ट्रांसलेशन में किसी को जिसने अरबी नहीं भी पढ़ी हो, नहीं भी समझी हो, क्या मसला है? ला अमलिकु ली नफसी दर्रा वला नफा, ये तो सारे उर्दू में भी ये लफ्ज है। मालिक भी अपनी जान का, अपने नफ्स का, जरर फायदा तो आम इंसान भी समझ सकता है। अगर ये बताएं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है मालिक, तो इतना बता दें मुझे कि कहाँ से आपने बना लिए अजमेर और हजरत अली हजबेरी को, और पता नहीं कौन कौन है, कहीं हजरत अब्दुल कादिर जीलानी को, और बेशुमार और बुजुर्गाने दीन को ये बना लिया कि ये कुछ करते हैं हमारे लिए। तो इससे अंदाज़ा कीजिए कि एक जगह पे उन्होंने लिखा हुआ कि एक मुसलमान का एक ईसाई से मुकालमा हो गया, बहस हो गई। ईसाई ने कहा, भाई मेरे रसूल तो वो थे कि जो हाथ लगाते थे और जिंदा कर दे, शिफा याब कर देते थे और मुर्दे को जिंदा कर देते थे, तो तुम्हारे नबी के बताओ। उसने कहा अच्छा, वो गया हजरत अब्दुल कादिर जीलानी के पास, उसने कहा देखिए मेरे साथ तो ये मेरी मदद करें, मैं तो बड़ा फंस गया हूँ। तो अब ये देखें कैसी बातें जो उन्होंने बनाई हुई है ना, ये अंदाज़ा करें कि हजरत अब्दुल कादिर जीलानी गए कब्र के पास, उन्होंने मुर्दे को हुक्म दिया, वो उठ के खड़ा हो गया। और कैसे हुक्म दिया मुर्दे को? कहा कि मैं तुझे अल्लाह के हुक्म से नहीं, अपने हुक्म से कहता हूँ कि तू खड़ा हो जा। और वो जब खड़ा हो गया तो उन्होंने कहा कि देखे अगर एक उम्मती का ये हाल है कि एक मुर्दे को खड़ा कर दे जिंदा करके, तो रसूल का क्या हाल होगा फिर? अब लोग इसके ऊपर जो वाह वाह करते हैं, जो लोग इसके ऊपर मतलब कुर्बान होते जाते हैं, जितनी आप एग्जेजुरेशन बात की करेंगे ना, उतने ही लोग जो है ना वो दीवाने हो जाते हैं। तो अगर उम्मती की ये मतलब पावर्स हैं, तो उस नबी का क्या फिर हाल होगा? जो नबी जिसके बारे में अल्लाह ताला कुराने पाक में फरमाते हैं, नबी आप कह दें मैं तो अपनी जान का भी मालिक नहीं हूं कि मैं अपने आप को कोई नफा पहुंचा सकूं या किसी नुकसान से बचा सकूं, मगर जो अल्लाह चाहे वही होता है। ये नहीं कि जो अल्लाह चाहे और जो उसका रसूल चाहे, ऐसा नहीं है। जब वो मैंने आपको बताया था, उन सहाबी ने कहा माशा अल्लाह माशा रसूल, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया फरमाया कि तुम मुझे अल्लाह के बराबर करते, और ये तो ये हाल करते हैं कि अल्लाह का पकड़ा बचाए मोहम्मद, मोहम्मद का पकड़ा बचा कोई नहीं सकता, ऐसी बातें करते हो फिर। और शिर्क किसको कहते हैं? इन्होंने तो औलिया कराम को भी इतना दर्जा दे दिया कि हय्या कयूम की जो ताकत है वो औलिया कराम में भी आ गई। अब देख लें कि कुरान कहता है कि ईसा अलैहि सलाम भी कहते हैं कि मैं मुर्दे को जिंदा करता हूँ, बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के इज़न से, तो मौजज़ा था। और ये इन्होंने कहानियां क्या बना ली? अल्लाह अकबर, अस्तग़फिरुल्लाह। और ये एक नहीं है, अनगिनत कहानियां आप इनकी किताबों में पढ़ लें, आपको मिल जाएंगी। और वो जुबान ज़दे आम, वहां से थोड़े लोगों ने पढ़ ली, फिर मिंबरों पे बैठ के उनकी वैसी उनको कहानियां लोगों को सुना दी। अब लोग जो है वो ही कहानियों पे बिलीव करके, और आप जाहिर है उन्हीं को पूजेंगे ना, वो और किसको पूजेंगे जो इनके नफा नुकसान के मालिक, जिनको उन्होंने समझ लिया। जबकि उन्होंने कहा कि वो बेड़ा पार होने वाला था, उसका बेड़ा डूबने लगा, तो हजरत अब्दुल कादिर जीलानी ने फरमाया कि मेरा नाम ले तो तेरा बेड़ा पार होगा, उसने अल्लाह का नाम लेना शुरू कर दिया था, वो डूबने लगा था। ने कहा वहां तक तो अभी मैं नहीं पहुंचा, तो तू कैसे पहुंच सकता है? तो ये सारी मन घड़त कहानियां, ना उन बुजुर्गान ने दीन ने ऐसी बातें कही, ना उन्होंने ऐसे काम किए, लेकिन झूठ के पलंदे इन्हीं को कहते हैं कि ये फिर क्या जवाब देंगे, और इनके पीछे जो चलने वाले हैं वो भी कितने अंधे जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, जो इत्तेबा करने वाले और जो उनके लीडर जो मिंबरों पे बैठ के ऐसी बातें करते हैं, ये उलमाए सू हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी पेशीन गोई कही थी कि उलमाए सू होंगे कयामत के नजदीक, जो जहन्नम के दरवाजों पे खड़े होंगे और लोगों को उसकी तरफ की दावत देंगे। लोग सोचते हैं ये मिंबर पे बैठ के जो भी बता रहा है ना, पता नहीं वो जमीन आसमान के कलाबे मिला दे तो उसके ऊपर सदके बारी कुर्बान होते जाते, और एक शोर हो जाता है मजमे में। इसके बाद हमें पता चलता है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमा रहे हैं माशा अल्लाह होता वही है जो अल्लाह चाहता है, तो मेरे और आपके केस में भी होगा तो वही जो अल्लाह चाहेगा, तो फिर झुकना किसके आगे? अल्लाह के, और उसी के दर के हमेशा अपने आप को मोहताज रखना। ये नहीं कि अच्छा यहां से तो नहीं मिला अब मैं कहीं और चलती हूँ, अगर यहां से नहीं मिलता ना तो कहीं और से नहीं मिल सकता, क्योंकि सारे सबसे बड़े दर, सबसे गनी और हर चीज के मालिक के दर से अगर आप हटते हैं तो उन मोहताजों के पास ही जाएंगे जो अपनी खुद के भी मालिक नहीं। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये बात आ गई तो बाकी तो सारे ही जित, चाहे औलिया अल्लाह हैं, चाहे वो कितने भी नेक बुजुर्ग हैं, चाहे वो सब उनसे तो नीचे है ना, तो फिर उनको कैसे ये मान लेंगे अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहीं हम ये बात मान सकते कि वो अपने नफे नुकसान के खुद ही मालिक थे। पता नहीं इन बातों की क्या वो तावील करते हैं, लेकिन असल में हमारी जाहिल अवाम जो है ये पढ़ती ही नहीं है, वरना वो उनसे पूछें जाके कि ये क्या लिखा हुआ। फिर लिकुल्ली उम्मतिन अजल, हर उम्मत के लिए एक मुकर्रर मुद्दत है, एक डेडलाइन है, इदा जा अजलुहुम फला यस्ताखरुना साअतन वला यस्तकदिमुन। ये भी बात पहले आ चुकी है सूरह आराफ में, हर उम्मत की एक वक्त है मुकर्रर, वो उस अपने वक्त मुकर्रर से ना आगे ना पीछे हो सकती, जैसे इंसानों की है ना एक जिंदगी की लाइफ स्पैन है, इस तरह कौमों का भी है। आप देख लें कई कौमें दुनिया में आई चली गई, कई को अल्लाह ताला ने मौका दिया अपनी पूरी जिंदगी गुजारने का, कईयों के ऊपर अजाब आ गए और वो खत्म कर दी गई, और जब अजाब आए तो फिर उसके बाद एक घड़ी भी आगे और एक घड़ी पीछे नहीं हुई। तो इसलिए तुम ये ना सोचो कि अच्छा नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो पता नहीं आएगा ही नहीं, या पता नहीं हमसे कोई कयामत ही टल गई, या हम जो मर्जी करते रहे इससे क्या फर्क पड़ता है।